सपनों की नगरी मुंबई से मध्य प्रदेश के छोटे से गांव डिंडोरी तक। इस महामारी में तिलक ने शुरू किया घर वापसी का ये लंबा सफर। गांव में तिलक की ब्याहता चंदा एक एक घंटा गिन के उसका इंतजार करती रही। क्या ले गया रास्ता तिलक को मंजिल तक, या रह गया ये सफर अधूरा? जानने के लिए सुने हमारा स्पेशल पॉडकास्ट उम्मीद जज्बात और लॉकडाउन की बात। सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.navbharatgold.com पर।
2003 में जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे सीज फायर अग्रीमेंट कहा जाता है, और इसीलिए हम जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, इंस्टिगेशन होती है, उसे कहते हैं सीज फायर वायलेशन। तो उस सीज फायर 2003 के अग्रीमेंट का पालन किया जाएगा और आज रात की मिडनाइट से ये पालन होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रोवोकेटिव फायरिंग नहीं होगी और रिस्पॉन्स में भारत की आर्मी की तरफ से भी अक्रॉस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी फायरिंग नहीं होगी।
सीज फायर एग्रीमेंट के पालन के लिए भारत और पाकिस्तान में सहमति पर यह कहना है आदित्य राज कौल का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 26 फरवरी और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर भारत बंद आज। 8 करोड़ व्यापारी करेंगे हड़ताल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स का भी चक्का जाम। किसान संयुक्त मोर्चा का व्यापारियों के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज में अमेजॉन इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। कहा, बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का सम्मान नहीं करने वालों को अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा मांगने का हक नहीं। अदालत ने तांडव नाम को ही भावना को ठेस पहुंचाने वाला माना। पाकिस्तान को एफएटीएफ से फिर लगा झटका, ग्रे लिस्ट में रहेगा बरकरार। निर्धारित 27 मापदंडों में से 3 अहम बिंदुओं को पूरा नहीं कर सका पाकिस्तान। उधर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट और मॉस्को एग्रीमेंट को लेकर हुई चर्चा। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट जीतकर 4 मैचों की सीरीज में बनाई 2-1 की अजेय बढ़त। बगैर विकेट खोए हासिल किया 49 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड की पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 5 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल बने मैन ऑफ द मैच। 4 मार्च से अहमदाबाद में ही खेला जाएगा चौथा और आखिरी टेस्ट। अब खबरें काम की। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती सरकार, भुगतान में देरी पर देना होगा उचित ब्याज। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर 6% की दर से ब्याज अदा करने का दिया आदेश। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में गुरुवार को 25 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर के लिए अब 769 के बजाय चुकाने होंगे 794 रुपए। फरवरी में अब तक 100 रुपए बढ़ चुका है सिलेंडर का दाम। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है भारत और पाकिस्तान का एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन ना करने पर राजी होना। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल से।
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच एक अच्छी खबर आई कि दोनों देश नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर संघर्ष विराम से जुड़े सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमत हो गए। अगर कभी कोई गलत फहमी होती भी है तो पहले से मौजूद हॉटलाइन कॉन्टैक्ट और सीमा पर फ्लैग मीटिंग का इस्तेमाल कर इसे दूर किया जाएगा। आदित्य राज कौल जी, लंबे समय की खटास के बाद एक अच्छी खबर आई कि सभी समझौतों का कड़ाई से पालन करेंगे दोनों देश। सबसे पहले तो ये समझौता हुआ क्या है, इसके डिटेल आपसे जानना चाहेंगे।
जी, समझौता ये हुआ है कि दोनों डीजीएमओ, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के, भारत की आर्मी के और पाकिस्तान की आर्मी के, उनके दरमियान हॉटलाइन पे बातचीत हुई और इस बातचीत पे बताया गया कि 2003 में जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे सीज फायर अग्रीमेंट कहा जाता है, और इसीलिए हम जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, इंस्टिगेशन होती है, उसे कहते हैं सीज फायर वायलेशन। तो उस सीज फायर 2003 के अग्रीमेंट का पालन किया जाएगा और आज रात की मिडनाइट से ये पालन होगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रोवोकेटिव फायरिंग नहीं होगी और रिस्पॉन्स में भारत की आर्मी की तरफ से भी अक्रॉस अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी फायरिंग नहीं होगी। तो देखना अब होगा कि कैसे और कब तक ये शांति प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसे वक्त आए हैं जब आपस में अग्रीमेंट्स हुए हैं लेकिन इसका पालन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। और कारण क्या रहा है? पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन। लेकिन देखा जा रहा है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत हुई है, आपस में चर्चाएं भी बहुत बैक चैनल से होती रही हैं पिछले कुछ हफ्तों में, और देखना होगा कि कब तक पाकिस्तान अमल रखेगा। लेकिन भारत ने खास तौर पर कुछ कंसर्न्स भी पाकिस्तान को जताई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो टेरर लॉन्च पैड्स है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और उसके आसपास, वो ध्वस्त करने की जरूरत है। और जब तक पाकिस्तान उसका इंटेंट नहीं दिखाएगा कि वो आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए, वो इंटेंट जरूरी है और वही इंटेंट ये दिखलाएगा कि पाकिस्तान कितना चाहता है शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।
जी, बीच में दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई थी, लग रहा था कि बातचीत से नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं, पर अब कैसे क्या हुआ जो ये सहमति बन पाई है? जैसा आपने कहा कि बैक चैनल बातचीत भी चल रही थी, खबरें ऐसी भी आई थी कि एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में पर्दे के पीछे पाक के साथ महीनों से बातचीत चल रही थी, तो कैसे क्या हो रहा था?
देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, मुझे जो सूत्रों से पता चला है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के आसपास जो हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 3 महीने के दरमियान ये बातचीत चली और ये बातचीत ज्यादा जोर तब पकड़ी जब यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई। और उसके बाद हमने देखा कैसे एक जगह एनएसए अजीत डोवाल अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मोइज यूसुफ से मिले भी, हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी जो पुष्टि है वो भारत सरकार ने या पाकिस्तान सरकार ने अभी तक नहीं की है, ये सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली है। इसके अलावा भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अजीत डोवाल और मोइज यूसुफ के, चाहे वो अलग अलग एजेंसी से हों या सिक्योरिटी फोर्सेज से हों या इवन सिविलियन हों, वो अभी मिलते रहे। ऐसी 2 मीटिंग्स जो मुझे पता है काबुल में, अफगानिस्तान में और दुबई यूएई में भी हुई पिछले चंद हफ्तों में। लेकिन पिछले 1 महीने में ये जो सारी मीटिंग्स हैं और ये जो बातचीत है, इसमें जोर पकड़ा और हमें बताया गया कि पाकिस्तान भी बहुत प्रेशर में था, और प्रेशर में इसलिए था क्योंकि फायरिंग जो है सिविलियंस को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी दोनों बॉर्डर्स पे, और पाकिस्तान दुनिया की नजर में आ रहा था कि कैसे प्रोवोक कर रहा है फायरिंग को और आतंकवादियों को भी समर्थन दे रहा है अंदर आने में जम्मू कश्मीर में। इसमें जो कश्मीरी हों या नॉन कश्मीरी हों, अक्रॉस एंड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल वो मारे भी जा रहे थे, उनके घर भी तबाह हो रहे थे। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में खबरें देखी होंगी या क्लोजली मॉनिटर किया होगा, वो असली रीजन जानते हैं। और असली रीजन ये है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में था अपने लोगों से। वहां पर प्रदर्शन चल रहे थे पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और वहां पर लोग चाहते थे कि एक अल्प विराम लगाया जाए फायरिंग पर, क्योंकि बहुत परेशानी का और दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। और बहुत बार जो है हाईवेज हों, मेन रोड्स हों या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनको बुरी तरीके से जो है ब्लॉक कर दिया गया लोगों द्वारा और जो अलग अलग गुट हैं वहां पर उन द्वारा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल वहां पर हो या सेंट्रल लेवल फेडरल लेवल पर हो इमरान खान, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। और भारत की सुरक्षा एजेंसी का यही मानना है कि वो प्रेशर जो है अब काम आया है।
प्रेशर भी काम आया और पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही थी उसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए थे। हाल में जिस तरह से पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन की बात की, उसने सबको चौंकाया था क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक के बाद से ही वो काफी तीखी बयानबाजी करते रहे हैं। उसके बाद इमरान खान के भी कुछ ऐसे बयान आए जब उन्होंने कहा कि आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं तो हम भी 4 कदम बढ़ाएंगे, तो ये कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए। तभी हाल में भारत ने इमरान खान को श्रीलंका जाने के लिए एयर स्पेस भी दिया, जबकि 2019 में पाकिस्तान ने हमारे 3 VVIP फ्लाइट्स को स्पेस नहीं दी थी। तो ये सब देख के लग रहा था कि कुछ तो प्रयास हो रहे हैं पीछे से।
जी अक्षय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारी कुछ दिनों पहले, फरवरी के पहले हफ्ते में भी ये बातचीत हुई थी, जिसमें हमने बातचीत की थी कि पाकिस्तान आर्मी के जो सेना अध्यक्ष हैं वो खुद बोले थे कि जो है कुछ प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए म्यूचुअल पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, और एक जो है जम्मू कश्मीर पर भी, आतंकवाद पर भी और पीस के ऊपर जो है हल निकालना जरूरी है। तो बदले बदले से सुर तो बिल्कुल नजर आ रहे थे और ये बदले सुर हमने डिस्कस भी किए, लेकिन अब डिस्कस करना ये है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। मुझे तो लगता है कि भारत हमेशा चाहता है कि शांति बनी रहे, लेकिन आतंकवाद भी खत्म होना चाहिए। आतंकवाद एज अ स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान जो पिछले 3 दशकों से इस्तेमाल करता रहा वो खत्म होना बहुत ही आवश्यक है अगर बायलैटरल डायलॉग या बातचीत जो है आगे बढ़ानी है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये पॉजिटिव सिलसिला चलता रहे और हम वायलेंस नहीं देखें लाइन ऑफ कंट्रोल में और कोई बड़ा आतंकवादी हमला भी नहीं देखें, तो हो सकता है कि ट्रेड में भी भारत कुछ ना कुछ छूट जरूर दे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लिए गए थे जब पठानकोट का हमला हुआ, उसके बाद हमने उरी का हमले भी देखा, उसके बाद मोस्ट रिसेंटली 2 साल पहले हमने पुलवामा की घटना देखी। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो है भारत की सरकार ने ट्रेड को लेकर भी लिए थे, वो भी मुझे लगता है उसमें चेंजेस आ सकती हैं और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो है भारत भी ले सकता है और पाकिस्तान भी ले सकता है। पूरा तौर पर बायलैटरल डायलॉग शुरू होने तो मुझे नहीं लगता कि आसान होगा, क्योंकि इंटेंट जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है और भारत का हमेशा से स्टांस रहा है कि आतंकवाद और शांति प्रक्रिया एक ही टाइम पे नहीं हो सकती। तो आतंकवाद खत्म होना जरूरी है शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए।
बिल्कुल, पाकिस्तान जब तक इसे गंभीरता से नहीं लेगा तब तक तो ये सवाल बना रहेगा कि क्या ये समझौता आगे इसी तरह कायम रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देश संबंध सामान्य करने की दिशा में कुछ और कदम भी उठा सकते हैं, तो और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में बेहतर संबंध कायम रखने के लिए?
देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेड को लेकर एक बहुत बड़ा जो है कदम हो सकता है, एक जो रिलीजियस टूरिज्म है चाहे वो सिख समुदाय को लेकर हो, मुस्लिम समुदाय को लेकर हो या इवन हिंदू समुदाय को लेकर हो, बहुत रुकावटें उसमें भी आ रही थी। करतारपुर का अभी भी जो है वो रुका हुआ है, बाकी जो हिंदू लोग वहां पर जाते हैं मंदिरों में वो भी अभी रुका हुआ था, या वहां से जो डेलीगेशन आते हैं अजमेर जाते हैं या दिल्ली में निजामुद्दीन में आते हैं उसमें भी बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, हालांकि वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी था, लेकिन हो सकता है वो रिलीजियस सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसमें काम लाए। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बता दूं जो मुझे अभी याद आया कि अभी इतवार को ही एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच खेला गया, और हालांकि ये सबको पता नहीं ये कहां हुआ कैसे हुआ, ये हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, और इसमें एक तरफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियन मीडिया का डेलीगेशन 11 लोगों का और दूसरे साइड थे पाकिस्तान के 11 लोग जो सारे डिप्लोमैट्स और स्टाफ थे। हालांकि पाकिस्तान ने ये पारी जीत ली और उनके जो खुद के मिलिट्री अटैचे हैं ब्रिगेडियर अली इकबाल वो मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन उनको भी नहीं पता होगा कि कुछ ही दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान डीजीएमओ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लेके आए। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी और कुछ हिंट्स ऐसे चलते रहे आगे, लेकिन अब देखना होगा कि और क्या स्टेप्स जो है भारत सरकार ले। मेरे को लगता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यही चाहती थी कि कुछ हद तक जो है भारत और पाकिस्तान में बातचीत चालू हो, आतंकवाद और जो वायलेंस है जो हिंसा है वो कुछ हद तक कम हो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में भी किसी तरीके से शांति प्रक्रिया जो बातचीत चल रही है उसमें भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आए। उसमें मे डेडलाइन आने वाली है ट्रूप विड्रॉल की यूएस को लेकर, लेकिन अब यूएस भी अपना मन बनाने पे तुला हुआ है कि वो इतनी आसानी से अफगानिस्तान तालिबान को सौंप कर बाहर नहीं जा सकता।
जी, फिलहाल तो जो पहल हुई है वो कायम रहे यही उम्मीद करते हैं हम। आदित्य राज कौल जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।
इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। नरमी के साथ खुले एशियाई बाजार यूरोपीय मार्केट्स में भी गिरावट का रुख, वहीं गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 320 में चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र के शासक बने। 1966 में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन। 2019 में भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को बनाया निशाना। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में गर्मी ने दी दस्तक, दिल्ली में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड। 2006 के बाद पहली बार फरवरी में 32 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। अब बारी सुविचार की। जर्मनी के कवि गेटे ने कहा था, फूट डालो और शासन करो अच्छी कहावत है, लेकिन एकजुट होकर आगे बढ़ो ज्यादा अच्छी कहावत है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।